नमो ताहि जाति भये अर्हन्तादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
ने बोले हम आई नाराज हो गए नहीं हमने कजी कल से
हम सभी लोग पिछले दिनों से लगातार विचार कर रहे हैं। मनुष्य विचारवान प्राणी है, विचार की शक्ति उसकी अपनी मौलिक शक्ति है और उस शक्ति का वो सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है, ये उस पर निर्भर है। हम लोग पिछले दिनों से अपनी उस विचार शक्ति का सदुपयोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा विश्वास है। पर इतना जरूर है कि उस विचार की शक्ति से हमें अपने जीवन में कितना लाभ मिला है, ये बाहर देखने में भले ही आए या ना आए, पर हमारे अपने अंतरंग में इस बात का अनुभव होता रहे कि हमने इस विचार का सदुपयोग करके अपने जीवन में कौन सा लाभ उठाया है। असल में हम विचार तो करते हैं पर उन विचारों में स्थिरता ना होने के कारण उन विचारों से हम लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। वे विचार थोड़ी देर को हमारे जीवन में परिवर्तन तो लाते हैं लेकिन वो परिवर्तन शाश्वत नहीं हो पाता है और उसके लिए हमने पिछले दिनों एक दूसरी प्रक्रिया शुरू की है कि विचारों को हम स्थिरता दें, उनमें दृढ़ता लाएं। उसके लिए एक ही श्रेष्ठ विचार का बार बार रिपीटिशन करें, बार बार उसका चिंतन करें और इसी का नाम अनुप्रेक्षा या कि भावना है। भावनाएं सिर्फ 12 ही होती हैं ऐसा नहीं है, 12 भावनाओं के माध्यम से हम वास्तविकता का विचार करते हैं, बस बात इतनी है। वैराग्य भावना भी है, 16 कारण भावनाएं भी हैं, और व्रतों के पालन करने के लिए हर एक व्रत की 5-5 भावनाएं भी हैं। वास्तविकता का बोध कराने वाली ये जो 12 भावनाएं हैं वो हमारे वैराग्य को, हमारे अपने व्रतों को, यहां तक कि हमारे अपने जीवन को स्थिरता देती हैं, इसलिए हम इन पे विचार कर रहे हैं। हमने अभी तक समझा कि 12 भावनाओं में हम जिन चीजों को जानते हैं, जिनका हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान हमारे रोजमर्रा के जीवन का अनुभव है और उसके साथ हम उसे जोड़ करके देखते हैं। ज्ञान को अनुभव के साथ जोड़ते चले जाना ये अनुप्रेक्षा का काम है, और ये अनुप्रेक्षा है माता के समान, जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है ऐसे ही हमारी रक्षा करने वाली है। और इतना ही नहीं, हमारी आसक्ति को घटाने वाली, हमारे मोह को घटाने वाली, हमारे मन को निर्मल करने वाली, जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ये अनुप्रेक्षा बताने का काम करती है। जहां हम चूकने लगते हैं वहां ये हमें सजेशन देती है, एक अच्छी भली सलाह देती है। जैसे कोई मंत्र होता है, मंत्र शब्द से ही मंत्री और मंत्रणा बना हुआ है। राजा अपने पास एक मंत्री को जरूर रखता था और राजा उससे निश्चित मंत्रणा लेता था। मंत्रणा यानी सलाह, ऐसे विपत्ति के समय पर जबकि कोई उपाय नहीं सूझता है, तब कोई हमें सही सलाह देने वाला हो वो कौन है? वास्तव में वही मंत्र है। और कोई भी शब्द मंत्र कैसे बन जाता है? जब उसके साथ हमारा मन पूरी तरह से जुड़ गया हो। बाकी मंत्र में शब्द ही तो होते हैं, कुछ शब्दों का जोड़ है, वो शब्दों का समूह है मंत्र। लेकिन उस मंत्र में जो रिपीटिशन है, उस मंत्र का अपना जो रिदिम है, वो रिदिम और उसमें शक्ति देता है। हमारा मन उस मंत्र के साथ जुड़ गया है, उसकी अपनी एक ध्वनि है। और इतना ही नहीं, हम उस मंत्र को निरंतर बोल रहे हैं। ये जो रिपीटिशन है, रिमेंबरिंग है, वो हमारे मंत्र को शक्ति देती है। जैसे अगर एक सेकंड में 18,000 बार आवृत्ति किसी ध्वनि की हो जाए तो वो ध्वनि अल्ट्रासोनिक साउंड कहलाता है, और उसमें इतनी पावर होती है कि अगर वो ध्वनि इस उंगली से टकराए तो उंगली को छेद करके नीचे खून निकाल देगी, इतनी ताकतवर वो ध्वनि होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड। लेकिन कैसे बनाए उसको? एक सेकंड में कोई 18,000 बार एक मंत्र को, एक शब्द को उच्चारण कर सकता है क्या? एक सेकंड में करते होंगे, श्रुत केवली महाराज करते होंगे, जो अंतर मुहूर्त में पूरे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं है, तो फिर क्या करें? 18,000 लोग अगर बैठ जाएं और एक बार उस मंत्र का हर व्यक्ति उच्चारण करे तो एक सेकंड में 18,000 बार मंत्र का उच्चारण हो सकता, वही शक्ति निर्मित हो सकती जो कि एक सेकंड में 18,000 आवृत्ति वाली ध्वनि से हम शक्ति उत्पन्न करते हैं। ये है रिपीटिशन, ये है एक्सपेरिमेंट, मास एक्सपेरिमेंट। एक सामूहिक जब हमारे भीतर चेतना उत्पन्न हो और हमारा मन एक ही चीज को बार बार रिपीट करे, हम कहते हैं क्या होगा बार बार 108 बार मंत्र पढ़ने से? नहीं, पूरे मन के साथ अगर 108 बार और जितनी अधिक शीघ्रता के साथ और ठीक उच्चारण के साथ, जैसा उसका रिदिम है ठीक वैसा ही। लोग कहते हैं मंत्र का देवता होता है, मंत्र का देवता समझते कौन होता? उसकी अपनी रिदिम मंत्र का देवता, उसका उच्चारण मंत्र उसका देवता होता है, और कोई अलग से मंत्र की रक्षा करने वाला देवता नहीं है। वो जो उसकी रिदिम है, और ये जो अनुप्रेक्षा है वो यही काम करती है कि बार बार हमारे भीतर एक ही विचार को हम रिपीट करते हैं तो वो मंत्र बन जाता है, और कभी अगर हम चूकने लगते हैं तो वो हमें बहुत अच्छी सलाह देता है, और इतना नहीं हमें वो बहुत सारी एनर्जी भी देता है, शक्ति भी देता है। ऐसी है यह अनुप्रेक्षा, शक्ति देने वाली भी है, सलाह देने वाली, हमको संभालने वाली भी। लेकिन ये विचार की शक्ति अगर हमारे भीतर निरंतर और बनी रहे और उसमें निरंतरता रहे तभी संभव है। अनुप्रेक्षा दो काम और करती है, वो डिसयूनियन करती है। दो चीजें जो कि एक नहीं है और एक जैसे होने का एहसास जिनका है, उनको अलग अलग कर देती है। निर्बंध करने की प्रक्रिया है, बार बार किसी चीज पर जहां की ज्वाइंट हो उस पर बार बार हैमरिंग की जाए तो क्या होगा, वो ज्वाइंट अलग अलग दिखने लगेगा। ठीक इसी तरह से शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। अब प्रश्न ये मन में उठता है कि जब दोनों अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग करने की क्या प्रक्रिया, अलग हैं? तो कहते नहीं, वे दोनों एक हो गए हैं, इस बात का जो एहसास है उस एहसास को तोड़ने का काम करती है कि अलग हैं नेचुरली। लेकिन ऐसा भ्रम हो जाए कि ये एक ही है तो उस एक होने को ये तोड़ देती है, तो पृथक पृथक तो दोनों हैं। ऐसा काम ये अनुप्रेक्षा करती है। निरंतर अगर हम विचारों की चोट करें, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग हूं, निरंतर इसी चीज का ध्यान करते रहें, कुछ क्षण के बाद लगेगा कि हां सचमुच मैं शरीर भी नहीं हूं और मैं शरीर से पृथक हूं। मैं क्या हूं इसका विचार बिल्कुल बाद की बात है, लेकिन मैं ये नहीं हूं, मैं ना शरीर हूं, मैं शरीर से अलग हूं। इस तरह अनुप्रेक्षा हमारे बिल्कुल एकदम साइंटिफिक है, जैसे कोई केमिकल डालें और दो चीजें सेपरेट हो जाएं, ठीक इसी तरह का। और इतना ही नहीं, डीकलरेशन भी करती है। जैसे रंगरेज के पास कैसे ही कपड़ा ले जाओ, जैसा रंग चढ़वाना चाहो वैसा रंग चढ़ा देता है। और ये रंगरेज का काम नहीं करती अनुप्रेक्षा, हम सब करते हैं रंगरेज का काम, जहां जाते हैं वैसा रंग चढ़ा लेते हैं। नाना प्रकार के रंग इस संसार में हमने अपने आत्मा पर चढ़ा रखे हैं। क्रोध का अलग रंग है, मान का अलग रंग है, मायाचारी का अलग रंग है, लोभ का अलग रंग है, पैसे का अलग रंग है, उसका अलग नशा है, धन संपत्ति का, अपने शरीर का अलग नशा है। सबके नशे हैं, सबके अपने अपने रंग हैं। इतनी रंगीनी है जीवन में, वो सारी की सारी रंगीनी को ओरिजिनलिटी में कन्वर्ट कर देता है, डिकलरेशन कर देता है। जैसे रंगरेज ने सफेद कपड़े पर लाल रंग चढ़ाया हो और फिर हमने उसको धो करके फिर से सफेद बना लिया। हमारे जीवन में अनादि काल से हमने अपने इस आत्मा को विभिन्न रंग दे रखे हैं, उन सब रंगों से पृथक मेरा अपना जो निर्मल स्वभाव है उसका एहसास कराने वाली यही अनुप्रेक्षा है। ऐसी इस अनुप्रेक्षा या विचार की निरंतरता पर हम विचार कर रहे हैं। देखिएगा, हम अभी सिर्फ विचार कर रहे हैं, अभी हम कहीं चुपचाप बैठ करके और इसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं। अनुप्रेक्षा का अभ्यास करने के बाद व्रत नियम संयम लेने की इच्छा ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा छेड़ाला में स्पष्ट लिखा है, सुधर्म मुनिन कर धरिए तिनकी करतूत उचरिए ताको सुनिए भवि प्राणी। 12 अनुप्रेक्षा के बाद अब मैं तुम्हें जो मुनि और का धर्म कहूंगा उसके अनुसार तुम अपने जीवन को बनाने की कोशिश करना। अब मुझे विश्वास है कि 12 अनुप्रेक्षा के बाद तुम उस धर्म को अपने जीवन में लाने के लिए उत्सुक हो जाओ। कोई बहुत बड़ी चीज हमारे जीवन में हासिल होने वाली हो तो छोटी मोटी चीजों को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब तक ये एहसास ना हो कि मुझे कोई बड़ी चीज मिल रही है, एक छोटे से बेटे को भी अगर माँ जब तक ये दिलासा नहीं दिलाती कि ये रख, ये लड्डू दे ही तो रही हूं तेरे को, तो वो खट्टी वाली इमली काय को खा रहा है, वो कहता नहीं ये बहुत अच्छी लग रही, ले ले ये लड्डू ले ले, पहले दो हाथ में, तुम्हारा क्या विश्वास कि नहीं दिया अगर तो माँ भी कहती तुम्हारा क्या विश्वास, हाथ में लेके और उस दूसरे हाथ से नहीं फेंको अगर तो, पहले फेंको नीचे रखो, पहले उसको चेहुआ जिसको बोलते हैं, रखो नीचे रखो उसको, फिर हम लड्डू देते तुम्हें, वो खट्टा और सब दांत घोंटले हो रहे हैं और फिर खाना भी नहीं खाया जाएगा, फेंक दो उसको, जितना खा लिया वो ठीक है लेकिन वो जो है वो रख दो, फेंक दो। ये अनुप्रेक्षा भी ऐसे ही सलाह देती है कि मैं तुम्हें उस श्रेष्ठ चीज के तरफ ले जा रही हूं, तुम इस सपनी जो खराब चीज है इसको छोड़ो। तो ऐसे कहने से कोई नहीं छोड़ सकता। मैं लाख कहूं एक महीने नहीं, मैं यहां साल भर भी, ये इस बात ओम नमः नहीं हुआ, बोलते रहो, मैं आवाज ही नहीं आ रही उसमें से। अपन बात कर रहे थे मैं आपसे कह रहा था कि यदि कोई श्रेष्ठ चीज मुझे प्राप्त होने वाली है तब मैं अपने पास जो खराब चीज है उसको फेंकने की तैयारी करता हूं। वैसे तो कोई हमसे कितना भी कहता रहे, मैं एक महीने नहीं, महाराज कह रहे थे कि हम एक महीने से आपसे कह रहे हैं और आप जो है अपने जीवन में जो श्रेष्ठ चीज हमको, हम आपको निरंतर बता रहे हैं, उसको अपने जीवन में प्राप्त नहीं करना चाह रहे हैं। असल में सिर्फ कहा जा सकता है, भरोसे के ऊपर और विश्वास के ऊपर भी बहुत सारी बात कही जाती, लेकिन विश्वास पर बात करना और विश्वास करना दोनों में फर्क है। जैसे तैरने की चर्चा कर लेना और तैरने के लिए उतर जाना और तैरने लगना, बहुत फर्क है इसमें। पाक शास्त्र पर पीएचडी लेकर के और डिग्री हासिल कर लेना बहुत आसान है, लेकिन किचन में घुस करके और फिर फूड हैंडल करना बहुत फर्क है। जब तक कि आपके पास अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपना कुछ अनुभव नहीं होगा, तब तक ये अनुप्रेक्षा यही काम करती है, हमें अपने जीवन में ऐसी अनुभूति दिलाती कि क्या छोटी छोटी चीजों में उलझे हो, छोड़ो इनको, हम देते हैं तुम्हें कोई बहुत बड़ी चीज जो तुम्हारी अपनी है, मौलिक है। अगर हम इस विचार की प्रक्रिया को निरंतरता देंगे तो मुझे विश्वास है कि हम सबके जीवन में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। यह बात अलग है कि हम चाहते हैं कि झट से हमारे जीवन में परिवर्तन दिखने लगे, तो ऐसा संभव नहीं है। वर्षों से कोई रोग हुआ हो और दो चार दिन मेडिसिन खाने से ठीक नहीं होता, मैं भी जानता हूं, पर अगर हम निरंतर उसका सेवन करेंगे, हम अपनी आदत बना लेंगे, मैंने आपसे कहा था कि उसकी हम आदत बना लेंगे, रोज हमें विचार करना है, रोज हमें चिंतन करना है कि क्या है मेरा स्वभाव, क्या है इस संसार की और इस शरीर की वास्तविकता, तो धीरे धीरे करके वो विचार हमारे जीवन को परिवर्तित कर देगा। यही प्रक्रिया हम निरंतर चला रहे हैं या स्वयं अपने जीवन में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोग परिवर्तन अपने जीवन में करेंगे। वैसे मैं ये भी जानता हूँ, हजार लोग सुनते हैं, परिवर्तन जो दिखने वाला परिवर्तन है एक आध के भीतर आता है। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि सुनकर के भी, और कितने लोगों ने अपना कल्याण किया है ये अपन सब जानते हैं, कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। मैंने वर्षों बोला नहीं और लोग मेरे से कहते थे कि आप प्रवचन क्यों नहीं करते हैं, बात क्यों नहीं करते हैं। मैं उनसे हमेशा यही कहता था कि क्या करूं, क्या करूंगा बात करके, इनको बस सुन लेनी है, मजा लेना है। हाँ बहुत अच्छा कहा महाराज ने, बहुत अच्छा बोले महाराज, क्या बढ़िया बोलते हैं, बड़ा ज्ञान है उनका, बस फोकट इतना कह के चले जाना, इनको करना वरना कुछ नहीं, ऐसा कहता था मैं। फिर बीना के पंडित जी कोठिया जी एक दिन मेरे से बोले कि महाराज ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी या तीर्थंकर सोच लें, उन्हें तो यह भी मालूम है कि कौन भव्य जीव है और किसका कब कल्याण होना है, तो उन्हीं उन्हीं को बुला के कि भैया तुम आओ कल्याण होने से तुम सुन ले, और बाकी से का करने उनको होने नहीं है, सबको समोचरण में से धकेल के बाहर निकाल देवे, और बाकी उन्हीं को बिठा लेवे दो जनों को जो उनको कल्याण होना है। कहती वो तो सवा दो घंटे तीन संध्याओं में और किसी के विशेष पूछने पर अपनी बात अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, सो हम लोग भी जो है अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। महाराज ने तो आपको टोक भी दिया, मेरा तो मन टोकने के भी नहीं है कि चलो जैसा आपको करना वैसे ही करो, लेकिन बूढ़े पुराने लोगों की आदत होती है, वो ये कहते कि अभी तक नहीं करो, कर काय नहीं रहे तुम। उसके पीछे उनकी दया और करुणा तो देखिएगा कि उनके मन में क्या विचार है। कह रहे क्या विचार ही विचार करते रहोगे, क्या सिर्फ सुनते ही सुनते रहोगे, अपने अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास क्यों नहीं करते, तुम्हें सामर्थ्य है, देखो मैं 75 साल का व्यक्ति कर सकता हूं और तुम जो है इतना अच्छा शरीर लेकर के और अभी बैठे हो, अभी कर लो, मुझे तो देर हो गई। वो ये कह रहे कि मुझे तो चेतने में देर हो गई, तुम तो अभी, हमें तो ऐसा संयोग नहीं मिला, हमको ऐसा लगता है कि हमें जो है और शायद पहले आ जाना चाहिए था, जो आ जाता उसको लगता है कि अरे और पहले आ जाना चाहिए था। हमारे भीतर ये जागृति क्यों नहीं आती है बार बार इतनी सब बातें, उसका कारण एक ही है कि हम स्वयं किसी के कहने से नहीं, हमारे भीतर स्वयं वो चीज अभी आ नहीं पा रही, हम उसी के लिए तो प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं किस दिन किसके भीतर और एकदम जिसको कहते हैं कि क्लिक हो जाए। आगरे में एक व्यक्ति है, वो पांड्या फैमिली के, तो वो यही कहते हैं कि महाराज आप कुछ मत कहिएगा, आप जब हमारे यहाँ आए थे उसके पहले हम आपको नहीं जानते थे, और आप हमारे यहाँ महीने भर रहे, हम आपको नहीं जानते थे, और आपने कितनी बातें कही हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दिन बैठे बैठे और आपके प्रवचन में बोले हमारे अंदर क्लिक हो गई बात, अब आपको छोड़ने वाले नहीं, हम इस रास्ते को छोड़ने वाले नहीं है, क्लिक हो गई बस। पता नहीं किस क्षण जो है हमारे भीतर, और ये चीज, छोटे छोटे बच्चों का मन बहुत निर्मल रहता, उनको तो कोई भी चीज बहुत जल्दी अप्रिशिएट कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी मान लेते हैं, हम लोग इतने चालाक किस्म के लोग हैं। हाँ सब ऐसा नहीं समझना कि मैं उसमें शामिल नहीं हूं, हाँ आप ऐसा बिल्कुल मत समझिए जब भी मैं ऐसी कोई बात करूं कि आपके लिए कह रहा हूं, नहीं, अपन के अंदर इतने संस्कार प्रबल हो गए हैं बेईमानी के कि अपन उसमें से गली निकाल लेते हैं। जब भी अपन को अच्छा करने का अवसर आता है, अरे अब लाए तो ले थे व्रत का पता, बाद में निभी कि नहीं निभी, उनको भविष्य की चिंता नहीं है, छोटे बच्चों को ले लो तुम तो, बाद में जब टूट जाए सो भगत चढ़ जाओ कि वो जो ना आपसे नियम ले लो, तो एक कल बिटिया आई थी कहने लगे हमने आपसे नियम लिया था प्राश्री दे दो, टूट गया, क्या नियम लिया था, हम झगड़ा नहीं करेंगे लेकिन कल थोड़ा झगड़ा कर लिया हमने, उनने बता भी दिया लेकिन उनने साहस तो किया, अपन का साहस नहीं हो पाता। हम अनुप्रेक्षा इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा साहस बने भैया, हमारे अंदर दृढ़ता आवे विचारों में, और एक बार हमारे विचारों में दृढ़ता आ गई तो फिर हम आसानी से कर सकते हैं। मुझे याद आता है सन नैनागिरी में, और लाइन लगी हुई थी, आचार्य ऐसे बाहर बैठ गए थे, ऐसे ही समझ लो नैनागिरी की ऐसे पर्ची बनी हुई है और उसमें आचार्य बैठे हुए हैं, और वो तो आचार्य जैसा, तो आज मेरे ख्याल से तो मैं किसी को कंपेयर नहीं करता, लेकिन मुझे अभी तक देखने में नहीं आया वैसा, वो अपने काम में लगे और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो जो है अगर अपना लिख रहे हो और अगर कोई आकर के ऐसा नमोस्तु ढूंढने ढांकने लगे तो हम कहते भगो यहाँ से, हम लिखने दो आप, ऐसा हो जाता, लेकिन वो अपने काम में लगे रहते हैं और कोई आता रहे जाता रहे नमोस्तु करता रहे कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। लोग आ रहे थे, लाइन लगी हुई थी, सब दमोस्तु कर रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, बादाम चढ़ा रहे हैं, सब चढ़ाते जा रहे हैं, और अचानक जो है एक छोटा सा बेटा भी उसी लाइन में है, 5 बरस का होएगा वो, मालूम वो चॉकलेट खा रहा है मजे से अपने पिता के साथ, चला जा रहा है। आप देखना कि मैं वही, मेरे सामने की घटना है, मैं देख रहा हूं उसके लिए कि देखें आप ये क्या करता है, इसके हाथ में पिता ने चावल भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, और वो एक चॉकलेट जो खा रहा है, आचार्य के पास पहुंच करके जो है उनको थोड़ी देर देखता रहा, फिर बाद में अब ये वाली चॉकलेट तो जूठी है, एक और रखे था वो अपने पॉकेट में, उसने फौरन उसमें से वो चॉकलेट निकाली और आचार्य के पास चढ़ा दी और अपनी चॉकलेट खा ली, उनकी तरफ देखा और आगे बढ़ गया। मैंने ये संस्मरण लिखा है कि मुझे ये बात बहुत अपीलिंग लगी कि उसने वीतराग मुद्रा को देख करके कोई उपदेश नहीं सुना, अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम आचार्य वर्यम। वे ही आचार्य श्रेष्ठ हैं जो कि वचन बोले बिना अपने शरीर की अपनी छवि के द्वारा कोई ना कोई वीतरागता का संदेश देते हैं। उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति से एक चॉकलेट छूट सकती है क्या कभी, लेकिन अपनी चॉकलेट हाथ में है, एक मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं उसे छोड़ता हूं। तुरंत निर्मल मन का काम है कि उसने तुरंत छोड़ दिया। और अपन तो इतनी सारी चीजें धरे हैं, भगवान 1,00,000 को लाभ हुई है तो एक छत्र चला जाए, 1 रुपया को, बस 1,00,000 में 0.1%। ये जो अपन के अंदर प्रवृत्ति नहीं आती है, उसका कारण मैं आपसे कहना चाहूं, हमारे अंदर आसक्ति बहुत है। अनुप्रेक्षा यही काम करती कि वो हमारी आसक्ति को धीरे धीरे तोड़ती चली जाए। हमें पता भी नहीं लगेगा, उस दिन पता लगेगा जिस दिन एकदम काम हो जाए। हाँ, फिर अपन ही आश्चर्य करेंगे कि अरे ये विचार मेरे अंदर कैसे आया कि मैं सहसा, अपन कहते हैं कि अरे एकदम इन्होंने तो जीवन ही बदल गया, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना आसक्त व्यक्ति और एकदम घर छोड़ के निकल गया, ये कैसे होता है। ये हमारे भीतर निरंतर जो विचार की शक्ति है वो भरती चली जाती है। ऐसा नहीं समझना कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन सहसा नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारा प्रयास है वो निष्फल भी नहीं जाएगा। हम इस भरोसे के साथ इस विचार को निरंतरता देवें, हमारी उपस्थिति अनुपस्थिति मायने न रखे, आपको आपके भीतर एक बार ये प्रक्रिया शुरू भर हो जाए। आज हम थोड़ा सा अपने इस बहुत निकट के व्यक्ति से थोड़ा सा अपने संबंध की चर्चा करते हैं। ये जो शरीर है, इस शरीर से मेरा अपना संबंध क्या है। लोगों ने तो बहुत बहुत इसके बारे में लिखा है, और जैसा जैसा लिखा है उससे तो ये लगता है कि ये शरीर बिल्कुल खराब चीज है, बिल्कुल ऐसा लगता है। और अगर बस चले तो इसको उठा करके एक आध दिन नाली में फेंकाना चाहिए, हाँ ऐसा लगने लगता है। इतनी घृणा से हमारा मन भर जाता है इस शरीर के बारे में पढ़ करके सुन करके। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो सुचि कीजिए तो भी शुद्ध। अरे हम तो रोज साफ सुथरा बनाते हैं उसको, और ये कौन सी लाइनें लिखी। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बड़ा। बताओ, इतना तक कह दिए फिर भी नहीं सचेत हुए। देह परस्ते होए अपावन, निषिदिन मल झारी। बताइए, ऊपर से चाम लपेटी दीसे और भीतर तो सब भरा हुआ है अपावन, ऐसा भी लिखा। हमने वो लाइन ना बोल के ऐसा बोल, हमारे मन में भी तो ऐसे भाव आना चाहिए कि वो बंदी बंदी लाइन जैसी है वैसे ही रटी रटाई। लेकिन मंगत राय की 12 भावनाएं पढ़ते हैं तब उसने क्या लिखा, काना पौड़ा पड़ा हाथ या चूसे तो रोवे, पले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय। बस कहना ये चाह रहे हैं और कुछ नहीं कहना। देह अपावन है इसका एहसास कराना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि ये पावन है और कुछ नहीं। मेरी अपनी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी जो गलत फहमी है, उसको दूर करना चाह रहे हैं। शरीर के बारे में वर्णन करके शरीर से घृणा पैदा करने की कोई चर्चा नहीं है जयराम, क्योंकि घृणा भी संसार बढ़ाने वाली है। जितना राग संसार बढ़ाने वाला है उतना ही घृणा भी। तो क्यों हमारे आचार्य भगवंत 12 भावना करवा के और हमारा संसार बढ़वाएंगे क्या? नहीं, शरीर से घृणा पैदा करके हमारा संसार नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, बल्कि शरीर की वास्तविकता का एहसास करवाना चाह रहे हैं कि तुम किस धोखे में हो। हमारे धोखे को तोड़ना चाह रहे हैं। लगता तो यही था मुझे भी जब पढ़ता था कि अरे काय को ये शरीर के बारे में ऐसा वर्णन कर रहे हैं आचार्य भगवान, बड़ी घृणा होने लगती है। नहीं, इस शरीर से हम जो राग कर रहे थे उस राग से हमें बचाने का प्रयास है। दूसरा एक नया द्वेष पैदा करने का करवाने का कोई भाव नहीं। राग छुड़वा के द्वेष पैदा करवाना ऐसा नहीं है, बल्कि इस देह की वास्तविकता समझ करके इसका सदुपयोग कैसे करना चाहिए यह संदेश दिया। क्या इस देह की निर्मलता, देह की अपवित्रता के साथ कोई चेतना की पवित्रता का ध्यान आ सकता है या नहीं आ सकता? जब जब भी देह की अपवित्रता की तरफ दृष्टि चली जावे, तब तब चेतना की पवित्रता का ध्यान आ जावे, मैं सोचता हूं कि ये हमारी 12 अनुप्रेक्षा में से असुचि भावना की सार्थकता हो जाएगी। देह को मलिन देख करके घृणा तो होती, अपनी ही देह दो चार दिन ने सपरो देख लो का हो, अपने ही को बदबू देने लगेगी, दूसरे को तो छोड़ो। लेकिन हम इसको रोज रोज ठीक साफ करके निभाया करते, इसके साथ में निर्वाह करते जैसे तैसे। हाँ, वैसी आदत डाल ली है, अगर दो चार दस दिन नहीं नहाएंगे ऐसी आदत डाली होती तो फिर इसकी अपावनता का एहसास होने लगता, या फिर हो सकता कि इसकी अपावनता में भी राजी हो गए होते। वो तो गई है, वैसे भी राजी कहते नहीं, इस अपावन तत्व को समझ करके उस अपावनता में राजी मत होना, उस निर्मलता को प्राप्त करने का प्रयास करना और इस अपावनता को रोज रोज साफ करने का मिथ्या प्रयास नहीं करना। मैं ये नहीं करूं कि नहाना मत, घिना बन जाना, ये संदेश नहीं दे रहे। गंदे कपड़े पहने रहना, गंदा शरीर रखना, अपवित्र रहना, ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि इसको पावन बनाने का मिथ्या प्रयास नहीं करना, इसको नहलाना धुलाना, लेकिन ये कभी पवित्र नहीं होगी, ये एहसास ध्यान में रखना। मुझे इसमें उतना ही समय जाया करना है जितने में कि मेरा काम चल सके, इससे बदबू ना आए बस, मुझे अपने धर्म ध्यान करने में मदद मिले बस इतना ही। क्योंकि मुझे तो दूसरी चीज को किसी को पावन करना है, कोयले को मैं कितना ही भी धोऊं उसकी कालिक दूर नहीं हो सकती, बस ठीक ऐसा ही ये है। लेकिन मुझे इसके भीतर जो बैठा हुआ है उसे पावन बनाने का वक्त निकाल लेना है, इस देह के साथ रह करके भी। ये औदारिक देह बहुत कीमती है, ध्यान रखना, ये अपावन जरूर है लेकिन बहुत कीमती है। वैक्रियक देह के साथ में तपस्या नहीं हो सकती, जो देव और नारकियों को मिली है वैक्रियक देह, कोई रोग शोक नहीं होते वैक्रियक देह में, बड़ी सुंदर दिखती है, कभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं होती, बुढ़ापा नहीं आता। लेकिन ये औदारिक देह और उसमें से भी मनुष्य की औदारिक देह, वो चीटी वाली औदारिक देह भी काम की नहीं है, लेकिन ये जो मनुष्य की औदारिक देह है जो किसी के काम नहीं आती, ध्यान रखना, पशु की काम आ जाती है, ये नहीं काम आती, लेकिन ये हमारे काम आ सकती है जब तक हम इसमें हैं तब तक, और किसी के काम नहीं आ सकती, ना चमड़ी ना इसका कोई भी पार्ट किसी के काम नहीं आ सकती, सिवाय फेंकने के काम की है ये, और फेंकने के लिए भी डंप करना पड़ता कहीं पर, या तो सड़ाना पड़ता या जलाना पड़ता, क्योंकि ये बाद में बहुत मुश्किल में डाल देती है। जब इसमें से चेतना निकल जाती है तो एक दिन भी कोई नहीं, एक घंटे नहीं धरना चाहता, बाहर करो देख लो आप। पहले किसी अपने परिवारजन को कहते हैं कि बाहर हो जाओ, नहीं पहले तो हम नहीं कहते कभी भी, लेकिन जैसे ही वो उसमें से निकल जाता है और देह पड़ी रहती तो फिर वो उसको रखो फिर संभाल करके, यही तो थी, नहीं ये नहीं, ये तो अपावन है, इसको तो बाहर निकाल। ऐसा एहसास हमें जीवन भर बना रहे कि हाँ सचमुच जो है मुझे इसका उपयोग कर लेना है, इसकी सेवा इतनी ही करनी है जिससे कि मेरा धर्म ध्यान होए, लेकिन इसकी चाकरी नहीं करनी, बस इतना ही, इसकी नौकरी नहीं करनी मुझे, ये मेरे लिए नौकर की तरह काम आवे ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे मैं वेतन देऊं। आचार्य श्री कहते हैं कि तन वाले हैं इसलिए थोड़ा वेतन तो देना ही पड़ेगा इस तन को, लेकिन काय के लिए, बेतन होने के लिए, शरीर से पार होने के लिए, इस देह से विदेह होने के लिए मुझे इस देह को ठीक ठीक सदुपयोग कर लेना, बस इतना ही अनुप्रेक्षा में मुझे विचार करना है और कोई बहुत बड़ा विचार नहीं करना। इस विचार को क्या आप कंटिन्यूटी दे पाएंगे, ऐसा विचार कर पाएंगे? ये तो काना पौड़ा है, काना पौड़ा समझते हैं, एक उसमें लाल रंग की लाइन आने लगती है, गन्ने में लाल होने लगता, वो फिर खाने के लायक नहीं रहता। चूसे तो रोपे, फिर चूसने लायक भी नहीं रहता है, रस नहीं रहता उसमें, लाल लकीर आ गई उसमें, वो खराब हो गया। लेकिन अगर उसी के पीस करके, और पीस करके मतलब टुकड़े करके, नहीं तो आप समझो कि वो चक्की में पीसने वाला, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, टुकड़े करके और अगर उसको उसकी गांठों को बो दिया जाए तो अनंत फल मिलता है, अर्थात रस युक्त गन्ना मिल जाता है। ऐसा ही ये शरीर है, इसको चूसें, इसको पांच इंद्री के विषयों का सेवन करवाएं तो धीरे धीरे ये नष्ट होता चला जाता है। लेकिन अगर हम इसे धर्म ध्यान की भूमि में बो देवें तो इससे हम अनंत फल भी प्राप्त कर सकते हैं। इस अनुप्रेक्षा का महत्व यही है। देखो भैया, अगर अपन गौर से देखें तो ये जो बाहर का रूप रंग है उसका महत्व है क्या, या कि मेरे भीतर की जो चेतना की निर्मलता है उसका महत्व है? किसी का कितना भी बढ़िया रूप हो लेकिन वो व्यक्ति ढंग से बात ना करता हो तो क्या हमें अच्छा मालूम पड़ता है? क्यों, अच्छा तो दिख रहा है बाहर से लेकिन उसकी चेतना अच्छी नहीं है। और किसी व्यक्ति का रूप रंग भी अच्छा ना हो, देखने में अच्छा ना लगता हो, पर वो बहुत प्यार से हमसे बोलता हो तो कैसा लगता है कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा है? मायने क्या है, हमारी चेतना महत्वपूर्ण है या कि हमारे शरीर का रूप रंग महत्वपूर्ण है? बस इतनी सी बात, इस पर हमें विचार करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, राजा इस चीज को नहीं मानता था और मंत्री सोचता था कि राजा को किस दिन इस चीज का एहसास करवा देंगे कि अकेले रूप रंग से कुछ नहीं होता, और धन वैभव और सोने चांदी जो बहुत अच्छे दिखते हैं उनसे भी कुछ नहीं होता। एक दिन की बात है कि उसने मन बना लिया मंत्री ने कि आज तो राजा को शिक्षा दे ही देंगे, और राजा ने जैसे ही पानी मंगाया तो उसने बढ़िया ग्लास में, सोने के ग्लास में, सोने के घड़े में से गर्मी के दिन में पानी निकाल करके राजा को दे दिया। राजा ने जैसे ही एक घूंट पिया और अरे भाई इतना गर्म पानी और क्या कर रहे हो तुम? अरे कहले महाराज, सोने का गिलास है, देखो तो जरा, और घड़ा देखो, आपने घड़ा कहाँ देखा अभी? हीरे जवाहरात लगे हैं, सोने का घड़ा है, उसमें से निकाल के दिया, अब आप पसंद नहीं कर रहे हैं उसको? अब राजा भी सोच में पड़ गया कि बात तो सही है, सोने के ग्लास में है, सोने का घड़ा है, लेकिन मामला गड़बड़ है, पिए ही नहीं जा रहा। अरे भाई पीने लायक पानी दो, ये तो पिए ही नहीं जा रहा। दिया उसने दूसरा पानी, वो तो रखे ही हुआ था मिट्टी का, बिल्कुल काला घड़ा, उस पर रंग भी नहीं किया था उसने, ग्योरी तक नहीं पोती, कम से कम थोड़ा ठीक तो दिखने लगे। ये जो बाजार में आता है ये पोता हुआ है, अगर सीधा भट्टी में से निकला हुआ देखो तो बिल्कुल एकदम। तो उसमें से एक ग्लास पानी निकाल के दिया और वो भी मिट्टी के कुल्हड़ में। राजा ने बड़े बड़े ठाट से, बड़ी सौंधी गंध आ रही है और बड़ा ठंडा पानी, भाई ये तो बहुत सुंदर, ये तो बहुत अच्छा पानी है। बोले देखना है आपको काय में से निकाला है? कहते दिखाओ, दिखाया तो काला कलूटरा सा वो घड़ा था, उसमें ठंडा पानी है। महत्वपूर्ण क्या है, मेरी प्यास जो ठीक से बुझा सके वही ना महत्वपूर्ण है, वो किसमें रखा हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब वो एकदम समझ में नहीं आता, घड़े में तो समझ में आता, बाकी में नहीं समझ में आती। अगर सोने का घड़ा मिल जाए तो कोई मिट्टी विट्टी का उससे बदलेगा नहीं, वो सोने का भी धरा रहेगा, मिट्टी का और खरीद लेगा। लेकिन ऐसा एहसास हमें हो कि नहीं, बाहर का रूप रंग और ये सब चीजें ठीक हैं, इन सब को भी बाहर में देखने में अच्छा मालूम पड़ता है, पर अच्छाई तो वास्तव में मेरे अपने चेतना की है, उसे मुझे निर्मल बनाना है। बस इतना भाव, इस शरीर में रहते हुए भी मेरे मन में ये विचार निरंतर चलता रहे कि मुझे निरंतर अपने इस आत्मा को निर्मल बनाना है, उसे मलिन नहीं होने देना,
तो हमारी जीवन की सार्थकता होगी। इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्श कराने वाला है। अथवा वग शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ी, बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अविनश्वर मणिया, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। समुद्रव्य ज्ञान वेखो बंद विध पान वेखो सपर पहचान वेखो परम प्रमाणी है, जहां तहां तार वेखो पार के उतार वेखो सुख वे सार वेखो ये ही जिन वाणी। जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन जो तेरा शरणाग है सो पावे, गल गा